الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانصرنا على القوم الكافرين صدق اللہ مولانا العظیم. میں بھی آپ حضرات کی جماعت کا ایک فرد ہوں. قرآن مجید کی اس آیت میں جو دعا مانگی گئی نصرت الہیہ کی, نصرت کہتے ہیں کوئی شخص کوئی کام کرتا ہو وہ اپنے آپ کو اس کام کے اندر کمزور پاوے تو اس کو دوسرے کے سہارے اور مدد کی ضرورت پڑتی ہے, دوسرا آ کر اس کا سہارا اور مدد کرنے والا بنے اس کو نصرت کہا جاتا ہے. اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نصرت اور مدد لینے کے لیے پہلے خود کچھ کرنا ہوتا ہے. اگر کوئی شخص خود کچھ نہ کرے اور محض نصرت کے اوپر بھروسہ کرے تو یہ اس کی بڑی نادانی ہے. اس آیت کے اندر جو دعا مانگی گئی دعا عام ہے. جب کبھی بھی ہم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے جو دین اسلام کو مانتے نہیں ہیں اور دین کے اوپر وہ حملہ کرتے ہیں, اور میں آپ کو یہ بات عرض کروں اس وقت کے اوپر دین اسلام پر اسلحہ طاقت کے ذریعے سے جو حملہ ہو رہا ہے اس کے مقابلے میں علمی فکری عملی اعتبار سے بہت بڑا حملہ ہو رہا ہے. اس وقت طاقت کے بل بوتوں کے اوپر حملے بہت کم ہیں, اس کے مقابلے کے اندر اسلام کے اوپر علمی اشکالات فکری حملے یہ بڑے تیزی سے بڑے خطرناک انداز کے اندر خوب ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دوں اس کی. اس وقت نشر و اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ میڈیا ہے. ایک تین قسم کا میڈیا ہے. ایک میڈیا ہے اس کو کہتے ہیں الیکٹرانک میڈیا. الیکٹرانک میڈیا کے اندر آتا ہے ٹیلی ویژن, ریڈیو, یہ جتنی بھی شکلیں ہیں, انٹرنیٹ, یوٹیوب, فیس بک, یہ سب الیکٹرانک میڈیا میں آتا ہے. دوسری ایک شکل ہے میڈیا کی جس کو پرنٹ میڈیا کہتے ہیں. یہ مختلف زبانوں میں اخبار اور رسائل جو شائع ہوتے ہیں, میگزین, ماہنامے, ہفتہ روزہ, روزانہ شائع ہونے والے, یہ سب پرنٹ میڈیا کہلاتے ہیں. تیسری قسم ہے سوشل میڈیا, اور سوشل میڈیا کا بہت بڑا ذریعہ واٹس اپ ہے. یوٹیوب بھی اس کی ایک شکل ہے, فیس بک بھی اس کی ایک شکل ہے. یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر نشر و اشاعت کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور میڈیا کی تین شکلیں میں نے آپ کو بتلا دی. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया है। मैं आपको बहुत यकीन के साथ कहूं, ये तीनों जरियों को सही सच्चे दीन के दुश्मन लोग पूरी ताकत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको जान करके हैरत होगी, इस वक्त इंटरनेट के ऊपर कम से कम 10,000 वेबसाइट ऐसी काम कर रही है जो इस्लाम के नाम के ऊपर बातिल को फैलाने में मशगूल है। आप उस वेबसाइट इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको ये लगेगा कि किसी मुखलिस मुसलमान और कोई मुखलिस मुसलमानों की तंजीम जमात ये काम कर रही है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि ये तो हम कहीं और जगह पर फंस चुके हैं। चूंकि कुछ ताल्लुक मेरा फिरके ज़ाल्ला मुदिल्ला से भी है, उनकी इसलाह का काम भी कुछ करते हैं, एक मरतबा एक बहुत बड़े आलिम दीन दूसरे भी एक बड़े आलिम दीन के साथ एक वेबसाइट बनाने वाले मुसलमान इंजीनियर के पास जाना हुआ। उनको हमने दरख्वास्त की कि एक वेबसाइट बनानी है, कुछ नमूने दिखाइए ताकि हम उसमें से इंतखाब करें कि इस अंदाज की वेबसाइट की ज़रूरत है। वो पढ़ा लिखा मुसलमान नौजवान, ग्रेजुएशन किया हुआ, उसने हमको वेबसाइट निकाल करके दिखाना शुरू किया। और मेरे हजरात अकाबिर उलमा, आपको सही बात बता, उम्मत इस वक्त के ऊपर दीन को मदरसों से, किताबों से, उलमा से सीखने वाले कितने और इंटरनेट से दीन सीखने वाले कितने, आप उसका एक मरतबा सर्वे और जायजा लीजिए। शायद मुश्किल से 10% मुसलमान ऐसे मिलेंगे आपको कि जो दीनी इदारों से, मदरसों से, उलमा से, किताबों से दीन सीखते हैं। शायद 90% मैं कम कह रहा हूँ, 90% मुसलमान आपको वो मिलेंगे जो महज इंटरनेट के ज़रिए से दीन इस्लाम को समझते हैं, सीखते हैं, हासिल करते हैं, अपने मसाइल का हल करते हैं। उसी को उन्होंने सबसे बड़ा ज़रिया बना रखा है और उसका हल मैं आपको बताऊं। जब वो मुसलमान नौजवान ने हमारे सामने वेबसाइट का, ये पहली वेबसाइट जो मुझे बहुत पसंद है वो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ, उसने खोली। जब उसका पहला सफ़ा खोला, अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गया कि ये क्या मुझे दिखा रहा है। थोड़ी देर मैंने उसको टोका नहीं, खोलने दिया। मैंने उसको कहा, भाई साहब आपको मालूम है आप मुझे क्या दिखला रहे हैं? तो कहा, एक बहुत बड़ी मुस्लिम महज़ब कोई कमेटी है, जमात है, उनकी बहुत अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से हमको दीनी मालूमात हासिल होती है। मैंने कहा, अल्लाह के बंदे, ये कादियानियों की लाहौरी जमात की वेबसाइट है जो तुम मुझे दिखा रहे हो। मिर्ज़ा कादियानी के मरने के बाद पहला खलीफा नूरुद्दीन हकीम बना। उसके मरने के बाद मसले खिलाफत में झगड़ा हुआ कादियानियों में, तो दो ग्रुप बन गए थे। वो दूसरा मौजू है, एक मिर्ज़ाई कादियानी जमात रही, दूसरी लाहौरी जमात बन गई। उनका ये जो तुम मुझे वेबसाइट दिखा रहे हो, ये लाहौरी ग्रुप की वेबसाइट तुम मुझे कादियानियों की दिखा रहे हो। तब वो तकी तकी निगाहों से मुझे देखकर कहने लगा, हमें तो मालूम ही नहीं, मैं तो इतने साल से इस वेबसाइट को सर्च करता हूँ, उसमें जानता हूँ, वहीं से अपने मसाइल का हल करवाता हूँ। आपके इल्म के लिए बात अर्ज करो, जितने भी इंटरनेट चलते हैं उसका ताल्लुक होता है मस्नूई सयारों से, जिसको सैटेलाइट कहते हैं अंग्रेजी में। हर मुल्क अपनी अपनी जरूरत के अतबार से सैयारे बनाते हैं, छोड़ते हैं, और खुद में इतनी इस्तेआत नहीं है तो किसी दूसरे टेक्नोलॉजी और साइंस से मालामाल मुल्क का सैयारा किराए पर लेते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि इसी गुमराह फिरके जिसका मैंने आपके सामने तज़किरा किया, उनके पास अपना जाती सैयारा है और उसके जरिए से उनके टीवी चैनल चलते हैं, वेबसाइटें चलती है, और दुनिया में हजारों जगहों के ऊपर ये गुमराही को फैलाने का काम करते हैं। गर्ज ये कि इस वक्त इस्लाम के ऊपर इल्मी, फिक्री, तहजीबी, सकाफती एतबार से बहुत बड़े खतरनाक हमले हो रहे हैं, और हमको हमारे अकाबिर की जिंदगी के अंदर उसके दिफा की मिसालें मौजूद हैं। तालुम देवबंद की तारीख उठा करके पढ़ लीजिए, 1857 के अंदर जब मुल्क अंग्रेजों की मुकम्मल गुलामी में चला गया, उस वक्त अंग्रेजों ने मुसलमानों में आपसी इंतिशार और इफ्तराक पैदा करने के लिए मुख्तलिफ गुमराह फिरकों के बानियों को खड़ा किया, तो दूसरी तरफ शुद्धि और संगठन के नाम के ऊपर बहुत सारे गुमराह हिंदू टाइटल के फिरके भी खड़े किए। उस वक्त जरूरत थी हालात के एतबार से तो हुज्जतुल इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानुतवी रहमतुल्लाह अलैह ने दारुलूम देवबंद के अंदर एक पंडित का तकर्रुर किया, तारीख दारुलूम में लिखा हुआ है। वो हिंदू पंडित दारुलूम में आते थे, उनको तनख्वाह मिलती थी और वो तलबा को संस्कृत जबान सिखाते थे, और हजरत का मंशा मुबारक यही था कि संस्कृत इनकी मजहबी जुबान है, उसको सीखेंगे तो इनकी बुनियादी मजहबी किताबों को समझ सकेंगे और उनके सामने हम दिफा और इसलाह की कोशिशें कर सकेंगे। हर दौर की जबान और तरीके अलग अलग हुआ करते, इसीलिए बहुत बादब मेरी आप हजरात से दरख्वास्त है कि इस वक्त जो इल्मी एतबार से मजहब इस्लाम के ऊपर हमले हो रहे हैं, जरूरत है कि हम इस सिलसिले के अंदर मुताला करके अपने बड़ों से रहनुमाई हासिल करके कुछ तैयारी करें कि अपने इस मुकद्दस दीन को हम दूसरों को सही माने में समझाने की खिदमत अंजाम दे सकें। उम्मत के हजारों नौजवान प्यासे हैं, उनके अंदर एक तलब है, लेकिन उनकी प्यास को बुझाने वाला जो उनके अंदाज में बात करके उनके जहन की सलाह करे और उनको सही जवाब दे, ऐसे अहले इल्म की बहुत कमी है। जरूरत है कि इस मौजू पर किताबों की कोई कमी नहीं है। एक जगह पर हमने बयान किया मस्जिद में, उसमें जीना के अकसाम बताए, मुस्लिम में जो रिवायत है, आँख का जीना, कान का जीना, जबान का जीना, हाथ का जीना, पैर का जीना, जब मैंने वो पूरी तफसीली रिवायत बयान की मजलिस के बाद जब मैं खाने के दस्तरखान पर था, उस बस्ती के बड़े बड़े नौजवान, कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, कोई साइंटिस्ट है, ग्रेजुएट लोग है, वो सब आए मुलाकात के लिए। मुझसे कहने लगे, कुछ मुजाकरा करना है, हमें आज ज़िंदगी में पहली मरतबा इन बातों का इल्म हो रहा है कि ये भी जीना के अकसाम है, कि इसको भी जीना कहते हैं। हम तो आज तक जीना की तारीफ एक ही चीज को समझते थे, लेकिन ये सब चीजें भी जीना में शामिल है, हमें आज तक किसी ने नहीं बताया। दूसरे दिन वहां बस्ती के अंदर उलमा की मजलिस थी, मैंने उन्हें अहले इल्म से बहुत लजाजत से दरख्वास्त की, अल्लाह के वास्ते उम्मत को हराम से बचाओ, इसके मुजरिम हम हैं, कि जो चीज उम्मत को हमें पेश करनी चाहिए वो आज तक हम पेश नहीं कर सके। इस वक्त तो सबसे बड़ा फिक्र ये है कि हमारे मुसलमान कैसे जहनी इर्तिदाद से बच जाए, सबसे बड़ा फिक्र ये है। आप कॉलेजों में, हाई स्कूलों में, यूनिवर्सिटियों में जाने वाले हमारे नौजवानों को मुलाकात करके देखो, उनसे मुजाकरा करके देखो, उनके सवालात सुन के देखो, तो डर लगता है कि उनके अंदर ईमान भी बाकी है कि नहीं है। नसलन मुसलमान है, खानदानी मुसलमान है, लेकिन उनका जहन, उनकी सोच, की फिक्रें, ये सब बिल्कुल बिगड़ के हद तक पहुंच चुकी है। इसीलिए इन चीजों से हम लोग आरास्ता हैं और उम्मत की इस वक्त की इस अहम तरीन जरूरत को पूरा करने की हम लोग कोशिश और मेहनत करें। दूसरी बात कि जब तक किसी साहिब निस्बत अल्लाह के वली से हम लोग ताल्लुक पैदा नहीं करेंगे, वहां तक हमारे इल्म में झीला नहीं आ सकता। हम सब अपने आप को देवबंदी कहते हैं और मसलके देवबंद के साथ निस्बत करना हम दुनिया आखिरत में सआदत समझते हैं। और उन अल्लाह के नेक बंदों की जूतियों को हम अपने सरों का ताज समझते हैं। हमारी निस्बतें उन मुकद्दस लोगों से जुड़ी हुई है। दारुल उलूम देवबंद के पहले दिन से लेकर आज तक हर दौर में मोहतमिम हो, शेखुल हदीस हो, वो किसी न किसी साहिब निस्बत अल्लाह वाले से मुताल्लिक रहे। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानोत्री, कुतुब आलम हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोई, ये दोनों हमारे मसलके देवबंद की आंख है, किसी को हम नहीं छोड़ सकते। मैंने अपने पीरो मुर्शिद हजरत अक्दस मुफ्ती महमूद हसन गंगोई रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में सुना अपने इन कानों से कई मरतबा। किसी ने पूछा, हजरत इस दौर में मुजद्दिद कौन? हजरत ने फरमाया, मौलाना रशीद अहमद गंगोही अपने रुफका और अपने तलामीजा की जमात के साथ इस दौर के मुजद्दिद हैं। हमारी वो निस्बत है जिसको हम अपने लिए सआदत समझते हैं। ये दोनों हजरात ने सबसे पहली बैत जो की, एक ऐसे शख्स थे जो इनके नाम के आगे हम मौलवी का लफ्ज भी नहीं लगाते, सैयदुत ताइफा हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने बैत की और जिक्र किया। अल्लाह ताला ने उनके उलूम में वो परवान चढ़ाए कि आज पूरी दुनिया के अंदर उनका फैज जारी है। कितनी बड़ी बात! इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हम इस्तिखारा करके जिस किसी साहिबे दिल बुजुर्ग से हमारा रुझान हो, उनके हाथ में हाथ देकर के बैत करके अपने बातिन की इस्लाह, अल्लाह के साथ ताल्लुक, जिक्र का एहतमाम, ये हमारे इल्म में जिला और रोशनी पैदा करने का जरिया है। इसकी बहुत सख्त जरूरत है इस दौर के अंदर। काल राम गुजार मर्द हाल शव पेश मत कामिल फामार शव। किलो काल छोड़ो और किसी अल्लाह वाले के हाथ के ऊपर हाथ देकर अपने आप को मिटा दो। हकीम अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर मुझे बहुत पसंद आता है, मैं सुनाया करता हूँ अहले इल्म को भी। जो किसी अहले दिल की सोहबत मिली किसी को अख्तर, उसे आ गया है जीना उसे आ गया है मरना। मेरी जिंदगी का हासिल मेरे जीस्त का सहारा तेरे आशिकों में जीना तेरे आशिकों में मरना बहुत जरूरी है। हम कुरान की आयत तो लोगों को खूब सुनाते हैं, यौम ला यनफऊ मालुम वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिकल्बिन सलीम। एक्सरे के सामने आए तो पता चले ना कि आदमी के अंदर है क्या चीज। किसी साहिब दिल के पास जाए तो पता चलेगा हमारे अंदर कौन कौन सी बीमारियां हैं। जब तक आदमी चेकअप नहीं करवाता वहां तक बीमारी का एहसास थोड़ा ही होता है। हम कहते हैं ना कि हमारे अंदर ये साथ इतनी बीमारी बहुत पुरानी है, लेकिन पता कब चला? जब चेकअप हुआ तो अंदाजा हुआ कि तो बहुत पुरानी बीमारी थी। तो ये चेकअप कहाँ होगा? किसी साहिब दिल के पास होगा। अल्लाह हम सबको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए। बहुत बड़ा हमारा मकाम है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी का हक हमें अदा करना है। और देखो एक आखिरी जिम्मेदार स्तर इस वक्त की मजलिस का, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا। हर एक की रिस्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन वअल्लमहु में शामिल है, तो क्या खुदा हमको भूखा मारेगा? सही नहज से इखलास से दीन का काम करे, कुरान की खिदमत करे, गाय पाप की कसम अल्लाह ताला कभी रोजी के मसले में उलझन में नहीं डाल सकते, नहीं डालेंगे। वलाकिन अखाफ अलैकुम अद्दुनिया फतना फसू फीहा। यह हदीस सिर्फ जाहिलों को अवाम को सुनाने के लिए नहीं, हमारे लिए भी है। अल्लाह हम सबको इसका एहसास अता फरमाए, जिम्मेदारी का एहसास अता हमें नसीब फरमाए और अपनी इस्लाह के साथ साथ उम्मत जो इस वक्त पर प्यासी है और ज़हनी अमली इर्तिदाद में मुब्तला है, उनके ईमान के लिए कुछ करने की अल्लाह मुझे आपको तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून। सलामुन अलल मुरसलीन वलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।